नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। शाम 5 बजे तक 64.82% वोट डाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया। इनमें राजस्थान के 3 स्टेशन शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला दिया। और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान अब से कुछ देर पहले संपन्न हो गया। आज दौसा, रामगढ़, झुंझुनू, चौरासी, खींवसर, देवली, उनियारा और सलूंबर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। शाम 6 बजे तक मतदान समाप्त हो गया। हालांकि नियत समय तक मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति दी गई है। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 7 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक 64.82% मतदान हुआ। दौसा में 55.63%, रामगढ़ में 71.45%, झुंझुनू में 61.8%, चौरासी में 68.55%, खींवसर में 71.04%, देवली उनियारा में 60.61% और सलूंबर में 64.19% वोट पड़े। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर ज्यादातर स्थानों पर मतदान के शांतिपूर्ण रहने के समाचार हैं। कई जगह मतदाताओं में मतदान के प्रति उत्साह देखा गया। कई स्थानों पर दूल्हे और दुल्हन विवाह संपन्न होने के बाद सीधे मतदान करने पहुंचे। दौसा के कालोता मतदान केंद्र पर 3 दूल्हों ने एक साथ वोट डाले। दौसा में ही कुछ मतदान केंद्रों पर महिलाएं लोकगीत गाते हुए मतदान केंद्र पर पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देवली उनियारा के समरावता गांव के मतदान केंद्र में निर्दलीय प्रत्याशी रमेश मीणा ने उपखंड अधिकारी से मारपीट की, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। टोंक की जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या झा ने बताया कि समरावता में ग्रामीण अपने गांव को देवली तहसील से हटवाकर उनियारा तहसील में जोड़ने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर धरने पर बैठे थे। निर्दलीय प्रत्याशी भी ग्रामीणों के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान ये घटना हुई। जिला कलेक्टर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई के लिए आगे लिखा जाएगा। वहीं आरएएस एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से मुलाकात कर घटना की निंदा की और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन उपचुनावों में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है।
मतदान संपन्न होने के साथ ही कुल 69 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। इन उपचुनाव में कई नेताओं के परिजन या करीबी चुनाव लड़े हैं। दौसा से भाजपा नेता किरण लाल मीणा के भाई, झुंझुनू में कांग्रेस सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे और खींवसर में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनाव लड़ी है। ऐसे में इन नेताओं की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस के लिए झुंझुनू, देवली, उनियारा, रामगढ़ और दौसा की सीटों को फिर से जीतने की चुनौती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए खींवसर सीट तथा भारत ट्राइबल पार्टी के लिए 84 विधानसभा सीट जीतना साख का प्रश्न बना हुआ है। वहीं इन चुनावों के नतीजों से राज्य की भाजपा सरकार के कामकाज को भी आंका जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने बिहार के दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य विकास परियोजनाओं के साथ इन केंद्रों का उद्घाटन किया। ये केंद्र यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विकसित भारत बनाने की दिशा में तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और मजबूती पर फोकस कर रही है। सरकार बीमारी से बचाव, बीमारी की समय पर जांच, मुफ्त और सस्ता इलाज, छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं, चिकित्सकों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक के विस्तार के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर नल से जल जैसे अभियानों से न केवल स्वच्छता बढ़ी है बल्कि बीमारियों के संक्रमण पर भी रोकथाम लगी है।
हमारा पहला फोकस बीमारी से बचाव पर है, दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है, तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले, हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना, और हमारा पांचवा फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। हमने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं। इससे कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियों के बारे में शुरू में ही पता लग सकता है। आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब मरीजों का इलाज हो चुका है।
इस कार्यक्रम में राजस्थान के भी 3 स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजनरी लीडरशिप में देश में विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। आज जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, बाड़मेर तथा फालना के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आम जन को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार फैसले ले रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि कार्यपालिका व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करके उनके अपराध का निर्धारण करने में न्यायपालिका के रूप में काम नहीं कर सकती है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायालय ने कहा कि उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति के विध्वंस को मनमाना समझा जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने लोकतांत्रिक शासन की नींव के रूप में कानून के शासन पर जोर दिया। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने संपत्तियों के अनधिकृत विध्वंस को रोकने के लिए अखिल भारतीय दिशा निर्देश भी जारी किए। न्यायालय ने कहा कि कारण बताओ नोटिस के बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए। नामित प्राधिकारी को प्रभावित पक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देना भी जरूरी है, जिसमें सुनवाई का विवरण विधिवत दर्ज किया जाए। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विध्वंसक कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, उसे संरक्षित रखा जाए, जिला कलेक्टर को रिपोर्ट किया जाए और डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए आज दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत सभी कोचिंग संस्थानों को अपने पाठ्यक्रमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी देने को कहा गया है, जिससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को गुमराह होने से बचाया जा सके। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के पास एक सक्रिय उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू होने के बाद पिछले साल सितंबर से इस साल अगस्त तक संस्थानों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि विद्यार्थियों को वापस की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों से चर्चा की। श्री यादव ने कहा कि यदि सफलता नहीं मिले तो भी निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में जिस भी मार्ग पर चलो, अपने अंदर की इच्छा शक्ति को मजबूत रखो तो सभी चुनौतियां पार की जा सकती हैं। उन्होंने कोचिंग विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ पर्याप्त नींद लेने और एकाग्रता के लिए योग प्राणायाम करने का सुझाव दिया। इससे पहले कोटा एयरपोर्ट पहुंचने पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने श्री यादव का साफा पहनाकर स्वागत किया। भरतपुर जिले के बांध बरैठा से किसानों को 15 नवंबर से रबी सीजन में सिंचाई के लिए जल वितरण शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव की अध्यक्षता में बांध बरैठा जल वितरण उपयोग समिति की बैठक में लिया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि समिति के सभी सदस्य नहरों में जल प्रवाह के दौरान निगरानी रखकर जल संसाधन विभाग का सक्रियता से सहयोग करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अंतिम छोर तक के सभी किसानों को आवश्यकता के अनुसार निर्बाध सिंचाई जलापूर्ति के निर्देश दिए। सांचौर जिले में आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शिविरों का आयोजन किया गया। सांचौर स्थित ओल्ड पावर हाउस और हाड़ेचा गांव में अटल सेवा केंद्र पर आयोजित हुए शिविरों में 30 नागरिकों ने मौके पर ही योजना के तहत पंजीकरण करवाया। जिले की सांचौर, रानीवाड़ा और चितलवाना पंचायत समिति क्षेत्रों में ये शिविर लगाए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में आज नार्को कोऑर्डिनेशन संबंधी जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला कलेक्टर शुभम चौधरी और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति देश और मानव समाज के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है जो नशे की सामग्री के रैकेट चला रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे इस बारे में खुफिया जानकारी पुलिस के साथ साझा करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 64.82% वोट डाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया। इनमें राजस्थान के 3 स्टेशन भी शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापन पर रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।